धर्माचरिता पुंसा
धर्माचरिता पुंसा
मनकाय बुद्धि आत्मसंताय बुद्धिः लोकान् शोकान् विदरति
जो लोग धार्मिक नियमों के अनुसार रहते हैं और जो मन वचन शरीर तथा बुद्धि से इनका पालन करते हैं वे स्वर्ग लोक को जाते हैं, जो समस्त शोकों दुखों से रहित हैं। इस प्रकार भौतिक प्रभाव से छूटकर वे असीम वो जीवन में असीम सुख प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर साधु सदृश ऋषि आदेश देते हैं कि राजा अथवा सरकार के प्रमुख को धार्मिक जीवन बिता कर एक उदाहरण प्रस्तुत करना उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है, धर्म का अर्थ है भगवान की पूजा करना। मनुष्य को दिखावटी धार्मिक जीवन नहीं बिताना चाहिए, परिणाम मन वचन शरीर तथा बुद्धि से भली प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल राजा अथवा सरकार का प्रमुख प्रकृति के गुणों के कलमस से अपने को दूर रख सकेगा, वरना सामान्य जनता भी और वे सब क्रमशः भगवान के धाम को जा सकेंगे। यहाँ पर जो आदेश दिए गए हैं वे सरकार के प्रमुख के लिए पथ प्रदर्शक का काम करेंगे कि उसे किस प्रकार अपना शासन शक्ति का उपयोग करना चाहिए, और इस प्रकार न केवल इस जन्म में वरना मृत्यु के पश्चात वाले जीवन में भी सुख प्राप्त करना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा धर्म आचरिता पुंसा वाङ्मनः खाय बुद्धिभिः लोकान् शोकान् वितरति तथानन्दम् असङ्गिनः। तो श्रीमद् भागवतम को प्रथम स्कंद में वर्णित किया गया है, निगम कल्पतरोल गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव सम्मितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावक। तो श्रीमद् भागवतम शुरुआत से ही हमें प्रेरित करता है और हमें आदेश देता है कि किस प्रकार से ये जो फल है निगम कल्पतरो गलितम फलम, ऐसा फल जिसकी कामना भी देवतागण करते हैं, इवन स्वर्गलोक का जो आनंद है वो अधिक मात्रा में है पृथ्वी से भी, लेकिन ऐसे देवतागण भी इस पृथ्वी में आकर शुकदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त या भक्ता के मुख से श्रीमद् भागवतम को पीना चाहते हैं। इसलिए जब परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी तत्पर हो गए थे श्रीमद् भागवतम सुनाने के लिए और देवतागण ऊपर से अपने स्वर्ग का जो स्थान है वहां से निकल पड़े हाथ में अमृत का कुंभ लेकर, क्या करेंगे? उन्होंने सोचा कि हम भी शुकदेव गोस्वामी के मुखारवंद से श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहते हैं। तो परीक्षित महाराज के लिए शुकदेव गोस्वामी तत्पर थे क्योंकि परीक्षित महाराज वो योग्य श्रोता थे जिनके अंदर लौल्य था कृष्ण कथा को सुनने के लिए। ये देवताओं ने सोचा हमें भी सुनना चाहिए। तो देवतागण शुकदेव गोस्वामी को अप्रोच करते हैं, हाथ में अमृत का कुंभ लेकर आते हैं और अमृत के कुंभ के बदले में क्या चाहते थे? वो कृष्ण कथा अमृत। और वो कृष्ण कथा अमृत शुकदेव गोस्वामी के पास था। तो शुकदेव गोस्वामी को कहते हैं कि अल्टीमेटली आपका प्रयोजन है कि ये जो राजा परीक्षित मृत्यु के कगार में खड़ा है इसको ये अमृत पिलाओ जो हमने स्वर्ग से लाया है, लेकिन कृष्ण कथामृत किसे दो? हमें दो। उन्होंने कहा वास्तव में उस भौतिक अमृत की तुलना कृष्ण कथामृत से नहीं की जा सकती, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी वास्तव में श्रीमद् भागवतम के प्रदाता हैं या श्रीमद् भागवतम को प्रदान करने वाले हैं। जैसे जैसे परीक्षित महाराज इन श्रीमद् भागवतम की दिव्य कथाओं को सुनते जा रहे थे तो दशम स्कंद के शुरुआत में ही वो कहते हैं भवाउषधि स्तोत्र मनोभि रामा। ये श्रीमद् भागवतम ऐसी औषधि है जो भव, इस भव में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो सागर है, हम सागर में डूबे ही हैं, लेकिन हम किसी सागर में डूबना चाहते हैं तो भागवतम कृष्ण कथामृत का सागर है, उसमें जितना डूबेंगे उतना ही इस भव सागर से मुक्त हो जाएंगे। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि भव औषधि संसार में कोई है तो वो श्रीमद् भागवतम है, इसलिए वो हमें दूसरे स्कंद में सावधान करते हैं। वो कहते हैं इस श्रीमद् भागवतम को पीना सीखो। जैसे माँ, तो हमारे पास ऐसा डिवोटी भी होना चाहिए हमारे लाइफ में, वो हमें क्या करे? इस कृष्ण कथामृत को पिलाए। जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है माँ अपना स्तन देकर क्या करती है? उसके मुंह में पिलाती है, उसका केयर करती है, फिर नेचुरली उस बच्चे में स्वाभाविक हो जाता है माँ के स्तनों से दूध का पान करना। तो उसी प्रकार से जो डिवोटीज है जिनके अधीन होकर भगवत भक्ति हम करते हैं और गंभीरता से अपने कानों के रंध्रों से कृष्ण कथा को नित्य रूप से सुनते हैं तो हमारे लिए इस अमृत को चखना या इसका आस्वादन करना स्वाभाविक हो जाता है और हम न चाहते हुए भी श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं।
इसी कारण से परीक्षित महाराज कहते हैं प्रविष्ट कर्ण रंध्रे न, ये जो कृष्ण है वो हमारे कान के रंध्रों से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने जो कान है वो खुले छोड़ने होंगे। इतना ही नहीं बल्कि भगवान कृष्ण भी इस श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए तत्पर होते हैं, इसलिए जगन्नाथपुरी में निवास करने के बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु का ऐसा एक भी दिन नहीं था कि वो गदाधर पंडित के चरणों में जाकर बैठते थे और गदाधर से कहते थे गदाधर आप कृष्ण कथा का वर्णन करो। एक बार जगन्नाथपुरी में एक महान ब्राह्मण थे प्रद्युम्न मिश्रा, प्रद्युम्न मिश्रा चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करते हैं गंभीरा में और वो कहते हैं कि मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं आपसे। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, आमी कृष्ण कथा नाही जानी, मैं कृष्ण कथा को जानता नहीं हूं। कृष्ण कथा को कोई जानता यहां जगन्नाथपुरी में तो वो एक ही डिवोटी है और वो है श्री रामानंद राय, जो श्री वल्लभ गार्डन में निवास करते हैं। महाप्रभु ने कहा, पहले तो महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र की प्रशंसा की, उन्होंने कहा इस जगत में त्रिभुवन में तुम सबसे अधिक सौभाग्यशाली या फॉर्चुनेट पर्सन हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा सुनने के लिए तुम्हारे अंदर डिजायर, जो तीव्र डिजायर है उसने जन्म लिया है। इसी कारण से रूप गोस्वामी कहते हैं तत्र लवल्य मूल्य में कलम जन्म कोटि सुकृतीर्ण लभ्यते, भगवान को प्राप्त करने की हमारे अंदर बहुत अधिक गहरी लालसा है लेकिन उसका प्राप्त करने की इच्छा है तो उसके लिए एक ही उपाय है। क्या है? तीव्र लालसा होनी चाहिए, चाहिए भगवान की कथाओं को सुनने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भक्तों का एसोसिएशन करने के लिए या भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी कारण से एक जो भक्त है वो भगवान से यही कामना करता है। जब पृथु महाराज ने यज्ञ किया था तो उनके यज्ञ में चार कुमार और भगवान विष्णु भी प्रकट हुए हैं, तो भगवान कहते हैं हे ओ राजा किंग, ओ पृथु कुछ याचना करो। पृथु महाराज क्या कहते हैं, मैं कुछ चाहता हूं तो कितने कान चाहता हूं, 10 लाख कानों की मैं इच्छा व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपका जो वर्णन है वो उत्तम श्लोकों से किया जाता है, आपकी जो वीर्य गाथा है ये जो लीला कहानी है इतनी अत्युत्तम है कि मैं जो अपना जीवन है वो निरंतर आपके श्रवण और कीर्तन में बिताना चाहता हूं। और यही डिजायर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में व्यक्त करते हैं, किससे, रामानंद राय से। जब रामानंद राय को विद्यानगर में गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं, रामानंद राय मद्रास के गवर्नर थे, और जब उनका संवाद होता है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रामानंद आप क्या करो, इन सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर जगन्नाथपुरी में आओ और मैं आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूं और क्या करना चाहता हूं, कृष्ण कथा। तो ये जो कृष्ण कथा है ये अमृत है, लेकिन हमारे साथ ऐसे नहीं लगता, कृष्ण कथा अमृत, हम क्या होते बैठते तो मरने लगते हैं, धीरे धीरे हम बहुत उत्साही होते हैं, धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। और वैसे ये बहु औषधि है। एक धनवान व्यक्ति था, उसको बहुत धनवान होता है तो उसके पास बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, धन के साथ कई सारे दोष भी आते हैं जीवन में, तो उसको समस्या थी नींद ना आने की, उसने सारे उपाय ढूंढ लिए। भौतिक जगत में हमें कुछ समस्या होती है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं, सब दोनों हाथ ऊपर कर लेते कि अभी कोई उपाय नहीं है, तो फाइनली किसी साधु महाराज संत गुरु की याद आती है, जिसकी लंबी लंबी जटाएं हो, बड़ा भस्म तिलक आदि लगाया हो, तो वैसे ही जाते सोचते हैं कि साधु के पास जाने से कुछ जड़ी बूटी मिल जाएगी जो उपाय हो सकती है मेरे लिए। तो ये व्यक्ति गया, लेकिन ये वैष्णव साधु के पास गया था। किसके पास? वैष्णव साधु के पास गया, उसको देखने मात्र से उसने पहचान लिया इसकी नींद ना आने के कारण क्या है, ये भोगी है। प्रभुपाद कहते ना तीन लोगों को नींद नहीं आती, योगी, रोगी, भोगी। तो वैष्णव साधु देखने मात्र से पहचान लेते हैं चेहरे को, तो उन्होंने कहा ये तो भोगी की कैटेगरी में है, ये यदि चला जाएगा तो इसका भला कैसे हो सकता है। हाँ, तो साधु को क्या कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, साधु वैद्य, पिशाची पलाय जाए। साधु रूपी डॉक्टर को हम अपने लाइफ में स्वीकार करते हैं तो उनके पास ऐसे ऐसे मंत्र और उपाय है कि माया रूपी पिशाची ने हमारी गर्दन पकड़ी है वो उसको भगा सकते हैं। तो ये भी इसके पास नींद आने की समस्या थी, तो उन्होंने उनको अप्रोच किया। साधु ने कहा कि ठीक है, अभी ना बहुत लेट हो गए हैं, सुबह सुबह आ जाओ 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। तो गुरुजी थे वो मठ के मठाधीश, तो बैठे व्यास आसन पर, सारे शिष्यगण बैठे थे। 8 बजे भागवतम की कथा उन्होंने शुरू की थी, और फिर ये व्यक्ति आ जाता है और आके देखते कि टेम्पल ऑल फुल है, जगह ओ पीछे जगह खाली है। हम भी स्पेस ढूंढते कृष्ण कथा सुनने के लिए, कहाँ ढूंढते हैं? सबसे पीछे, और वो भी दीवार के साथ। क्योंकि कहते ना कलयुग में सहारा लिए बिना भगवत भजन असंभव है, तो हम हमेशा सहारा ढूंढते हैं। तो सहारा लेते हैं, लेकिन डिवोटीज का सहारा नहीं लेंगे, हरे नाम का सहारा नहीं लेंगे। किसका सहारा लेंगे? दीवार का सहारा लेंगे। दीवार का सहारा लेके बैठते हैं, ये भी व्यक्ति देखा सारे भक्त आगे आगे बैठे, स्पेस नहीं है, थोड़ा सा स्पेस बचा था दीवार के पास, वहां बैठता है। जैसे जैसे वर्णन हो रहा था वैसे वैसे इस क्या हो रही थी, इसकी आंखें सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, आंखें क्लोज हो रही थी, और देखे कि खराटे की आवाज आ रही है। तो अभी गुरु जी के जो डिसाइपल थे, अभी होता है ना कि अरे मेरे गुरु जी की क्लास में आप सोते हो, तो शिष्यों ने सोचा ये हमारे एक आध्यात्मिक गुरु की क्लास में सो रहा है, उसको चिकोटी, उसको उठा रहे थे, उठ भागवतम में सोता है, वो भी मेरे गुरुदेव क्लास दे रहे हैं। तो जैसे ही वो बेचारा, तो गुरुदेव कहते हैं वो सही स्थिति में है, उसको डिस्टर्ब मत करिए, उसके लिए यही समाधि है। तो वो व्यक्ति क्लास खत्म भी हो गई, सारे भक्त गए, प्रसाद भी लिया नीचे जाकर, और ये व्यक्ति खराटे लेते जा रहा है। तो बहुत पूरा संध्या तक सो रहा था, उठा तो उसने अपने जीवन में आश्चर्य अनुभव किया। क्या आश्चर्य, इतने उपाय मैंने ढूंढ लिए है लेकिन कोई भी औषधि काम नहीं करती, लेकिन एक औषधि है जो काम कर रही है, और वो कौन सी है? भव औषधि। तो इससे क्या हुआ कि ऐसी औषधि है चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, लेकिन ये अपना प्रभाव डालती है, और उस व्यक्ति के अंदर एक गुण का विकास हो गया, श्रद्धा। क्या उत्पन्न हो गया? श्रद्धा। बल्कि वो सो रहा था, लेकिन बारंबार आने से, भक्तों के संग में श्रवण करने से, इसलिए कपिल देव अपनी माता देहोवती को कहते हैं सता प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती रुत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषनादाश्व अपवर्ग वर्तमनि। श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमश्रति, कहते सुनना है तो भक्तों के संग में सुनो, वो बहुत शक्तिशाली है। जिससे क्या होगा, कृष्ण के प्रति तीव्र स्ट्रॉन्ग श्रद्धा रति और भक्ति आसक्ति का विकास हो सकता है। तो इसलिए हमें श्रवणम में बहुत ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। हम भक्ति रूपी महल अपने जीवन में खड़े कर रहे हैं, लेकिन उसकी नींव क्या है? श्रवणम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं श्रवण कीर्तन चले करे सेचन। ये गुरु से श्रद्धा रूपी जो बीज आपको मिला है उसका सिंचन करना आवश्यक है, सिंचन करना आवश्यक है, और सिंचन किससे होता है? श्रवण कीर्तन वैष्णव के संग में आकर जब हम करते रहते हैं तो ये भक्ति रूपी जो लता है ये उन्नत होती है, और गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है। हाँ, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम हर श्लोक हमें प्रेरित करता है। और भगवान भी अपनी कथा में बाधा नहीं डालने का दुस्साहस नहीं करते हैं। श्रीरंगम में आप जाओगे तो वह भगवान रंगनाथ है, वो हमेशा लेटे रहते हैं। कितना समय लेटे रहोगे आप हमें कहा जाए प्रभु जी आप बस लेटे रहिए ऐसे अनंत शेष के ऊपर। तो भगवान रंगनाथ चतुर्भुज है वहां श्रीरंगम में और वह अनंत शेष की शैया पर लेटे रहते हैं। लेकिन एक डिवोटी था जो कंटिन्यूअसली जो उनका मंडप में बाहर वहां कृष्ण कथा का वर्णन कर रहा था, वहां उनको निद्रा भंग हो रही थी। इनके भंग नहीं हो रहे थे, उन्होंने सोचा इतना अमेजिंग कृष्ण कथा का वर्णन हो रहा है जिससे कृष्ण भी क्या हो गए, आकृष्ट हो गए। इसलिए कृष्ण का नाम कृष्ण है, आत्म पर्यंत कर्षति इति कृष्ण, केवल सारे जीवों को आकृष्ट नहीं करते, कृष्ण अपने आप से भी अपने गुण नाम रूप गुण लीला से आकृष्ट होते हैं, आत्म पर्यंत स्वयं आकृष्ट होते हैं। इसलिए उनको आचार्यगण कहते हैं कृष्ण कहा जाता है। तो ऐसे रंगनाथ ने देखा कि कृष्ण कथाओं का वर्णन किया जा रहा है और मैं यहाँ लेटा हुआ हूं, तो देखा अरे मेन पुजारी आल्टर में नहीं है, वो मंगल आरती में होता है गायब हो जाता है पूरे दिन में। देखा वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है, उस समय क्या होता था लाइट्स तो होती नहीं थी, हाथ में जो मशाल लेकर वो जो चौकीदार है गार्ड्स खड़े हुआ करते थे। तो भगवान ने कहा हरि बोल इधर आओ, तो गार्ड आते अरे मुझे कृष्ण बुला रहे रंगनाथ साक्षात। उन्होंने कहा देखो मेरी व्यवस्था करो, मुझे बाहर ले जाने की व्यवस्था करो, ये छोटे से गर्भगृह में बिठा के रखते हो, कभी कभी बाहर भी ले जाया करो। और वैसे श्रीरंगम 40 या 50 दिन वहां फेस्टिवल्स होते हैं। रंगनाथ को उत्सव प्रिय डीटी है, जिनको क्या अच्छा लगता है फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने उस गार्ड को कहा आओ मुझे ले चलो बाहर, पहले तो पुजारी को बुलाओ मुझे ले चलो, जाओ कथा हो रही है ना मेरा वर्णन हो रहा है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। तो पुजारी आ गया, भगवान के जो उत्सव विग्रह नम्म पेरुमल उनको उठाया और भगवान निकलते तो फिर अकेले नहीं निकलते, सारे ढोल नगाड़े तुरही भक्त लोग नाचते रहते गाते रहते हैं। तो पूरा ताम धाम, अभी अकेले जाना था उनको कृष्ण कथा सुनने के लिए, इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा वृंदावन जाना है महाप्रभु, इतना सारा सर्कस लेके मत जाओ, कैसे जाओ अकेले जाओ या कोई एक संगी आपके साथ हो तो अच्छे से भजन कीर्तन हो सकता है। तो यहाँ रंगनाथ के साथ सारे उनके जो पुजारी है पंडाज है सारे निकल पड़े, आवाजें करते जा रहे थे और वहां पहुंच गए जहां कथा हो रही थी। तो वहां पहुंचे पीछे के गेट के दरवाजे पर तो देखा इतनी सारी आवाजें आ रही हैं, डिस्टर्ब हो रहा है सारा कथा का वातावरण। तो एक भक्त उठ जाता है कथा के बीच में और ऊंचे स्थान में जाकर खड़े हो जाता है, कहते ऐसे कैसे भगवान है अपनी कथा में बाधा डालने के लिए यहां पहुंचे हैं। तो भगवान तो उनके कान तो कहते ना सर्वतः पाणिपादम, पर गीता में कृष्ण कहते हैं हम परमात्मा का वर्णन करते हुए कि उनके हाथ पांव कान सब जगह फैले हुए हैं। तो भगवान ने सुना कि ऐसे बोल रहा है ऊपर खड़े होकर, हाँ अपने पुजारी का कान पकड़ के कृष्ण चलो यू चल वापस उनको आल्टर में ले जाते हैं और वह शपथ लेते हैं कि आज से मैं किस चीज में बाधा नहीं डालूंगा कृष्ण कथा में। तो मतलब भगवान के अंदर भी वो लालसा जागृत होती है जब अपनी कथा का वर्णन किया जाता है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम जब हम श्रवण करने के लिए हमें मौका मिलता है तो हमें बिल्कुल अपनी कपटतापूर्ण भावनाओं को त्याग करके एकाग्र होकर एकाग्र चित्त से भगवान की अद्भुत जो कथाएं हैं चर्चा हैं उनको श्रवण करने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो प्रभुपाद जैसे पिछले कल के श्लोक में वर्णन आया था कि किस प्रकार से ये जो मुनिगण हैं वो जाते हैं राजा वेन के पास और वेन के पास जाकर वो सोचते हैं कि ये जो राजा वेन है ये बहुत ही भयानक है, ये रक्षक होना चाहिए लेकिन ये क्या है भक्षक है। उसकी तुलना मैत्रेय मुनि कहते हैं कि वो मत्त पागल हाथी के समान है। तो इस प्रकार से जो प्रजा है वो भी बहुत अधिक पीड़ा अनुभव कर रहे थे। तो ये सारे मुनियों ने सोचा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, तो ये मुनिगण चलते हैं। वो सोचते हैं कि राजा को कुछ उपदेश दिया जाए। तो उनका नाम ही क्या है, वेन, कोई और दूसरा वे नहीं है, वेन को जाकर दूसरा और वे ढूंढना पड़ेगा। इसके आने के कारण सारे रास्ते क्या हो गए हैं, बंद हो गए, इसलिए उनका नाम वेन है। तो ऐसे वेन के पास वो जाते हैं और उनको उपदेश देते हैं। मुनयः उच्चो, मुनिगण कह रहे हैं, कल के श्लोक में उन्होंने उपदेश दिया कि क्या होगा, आप इन हमारे उपदेशों को सुनोगे तो आपकी जो आयु है, हाँ, विवर्धनम, ऐश्वर्य, बल, कीर्ति, ये सारी चीजें चीजों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन उनके पास सुनने के लिए या समय नहीं है, या वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मुनिगण सोचते हैं, मुनिगण वैसे वो काम कर रहे थे, हाँ, जैसे कहते ना, भुजंगानाम पय पानम केवलम विष वर्धते, सांप को आप दूध पिलाओगे तो क्या होगा, उसका विष ही बढ़ेगा। तो ये राजा वेन उस भुजंग के समान है, वो चाहे सदोपदेश दो या जो जिस किसी प्रकार का उपदेश दो, उनमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो सदोपदेश वास्तव में साधुगण हमें प्रदान करते हैं। और साधु कौन है, तितिक्ष्वाहा, कारुणिकाहा, सूरदा, सर्वदेहिना, अजात शात्र, शत्रवाहा, शांता, साधव, साधु भूषणा। साधु का मतलब है जिनमें वास्तव में साधु वृत्ति है, वृत्ति में स्वभाव, साधु के गुणों की खान है। साधु वस्त्र आदि से नहीं बनता या पोजीशन आदि से नहीं, साधु वो है जो गुणों से अलंकृत है। इसी कारण से प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, और विशेष रूप से ये जो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहते हैं पुंसः धर्म आचरति, मनुष्य किस चीज का आचरण करता है, धर्म का आचरण करना चाहिए, लेकिन कैसे, वाक, मनः, काय, बुद्धि भी, वाचा, मान, शरीर और बुद्धि के साथ। और इससे क्या होगा, तो अगले लाइन में वो कहते हैं असंगिना, और दूसरा शब्द है अनंत्यम। असंगिना का मतलब यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से अपना शरीर, मन, वाणी और बुद्धि से पूर्ण रूपेण धर्म का आचरण करता है, उससे असंगिनाम, सारे कलमश दूर हो जाएंगे उसके जीवन के, और अनंत्यम मतलब उसको अपार सुख की प्राप्ति होगी, वैकुंठ रस की वो अनुभूति करेगा। तीन रस है इस संसार में ना, एक है जड़ रस, जो हम अपने भौतिक इंद्रियों के कारण उन्मत्त रहते हैं, पांच इंद्रियों से रस का पान करना चाहते हैं, भौतिक रस। और दूसरा है, इस रस हमें मिलता नहीं है, इससे तृप्त नहीं होते हैं, तो सोचते हैं स्वर्ग में जाएंगे, वहां सोम रस का पान करेंगे और अप्सराओं का संग करेंगे, तो उसको कहते हैं स्वर्गीय रस। लेकिन उस रस से भी एतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, गीता में कहते हैं स्वर्ग का सुख कितना है, विशाल है। कृष्ण क्या कहते हैं, स्वर्ग लोकम विशालम, लेकिन जैसे पुण्य खत्म होते हैं इस संसार में आते हैं। तो तीसरा रस क्या है, वैकुंठ रस। वैकुंठ रस वास्तव में वैकुंठा डिवोटी के एसोसिएशन से हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे वैकुंठ रस संभव हो सकता है यदि व्यक्ति क्या करे, अपने काया, मन, वाणी और बुद्धि से धर्म का आचरण करता है, तो भगवत भक्ति में प्रवृत्त होता है। इसी कारण से प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को दिखावटी धार्मिक जीवन नहीं बिताना चाहिए। प्रभुपाद कहा करते थे शो बोटल डिवोटी, कैसा डिवोटी, शो बोटल डिवोटी। तो इसी कारण से कलयुग में अधिकतर क्या है, दिखावे के भक्त है, शो बोटल डिवोटी है। जैसे उड़िया में कहावत है ना, दो जो प्राणी थे वो भी डिवोटी बन गए। एक थे वो कहते हैं बक धार्मिक बिराड़ी वैष्णव, बक मीन्स बगुला। बगुला सोचा कि मैं इतना लंबे समय तक ध्यान लगा के रहता हूं जल में, एक पांव में खड़े होता हूं, मछली आसपास मंडराती भी नहीं है, हाँ? उसने देखा, अरे इस्कॉन डिवोटी तो उनके लिए तो इजी है, प्रसादम की चिंता नहीं है, किसी चीज की चिंता नहीं, सारी चीजें अपने पास फ्लो हो रही है। भक्त बनने के बाद क्या है, सारी चीजें आ रही, तो उसने सोचा ज्वाइन करता हूं। बगुले ने क्या सोचा, फुल टाइम ज्वाइन करता हूं। तो बगुला भी भक्त बन गया, बक धार्मिक, बगुला भक्त बन गया। नीच एंड क्लीन उसके वस्त्र थे, शुभ्र वस्त्र, और उसने कंठी माला भी धारण की और इतना सिंसियर डिवोटी बन गया। लेकिन खड़ा पानी में रहता था, जप करने के लिए कहां खड़ा रहेगा, पानी में। लेकिन सोचा नहीं, अभी मैं भक्त बन गया हूं, सारे पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल 16 राउंड। तो ऐसे माला लेकर, हाथ में लेकर बगुला पानी में खड़ा था और उसने क्या किया, सोचा पानी पीना पड़ता है, जपा के बीच बीच में क्या करते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं ना, तो वैसे भी सोचा बीच बीच में पानी पीना पड़ता है, तो जल में मैं अपनी चोंच डालूंगा तो मछली गलती से ना आ जाए अंदर। तो जाली लगा दी, क्या लगा दी, जाली। तो ऐसे जैसे डिवोटीज होते हैं, तो जाली लगाए तो उनको लगा, तो लेकिन देखा बहुत समय हो गया, जब करने से भूख भी लगती है बाद में। तो जब करते जा रहा था, करते जा रहा था, बगुला खड़ा था एक पांव में, सबको लगा कि आंखें बंद करके प्रभु जी एक पांव में खड़े होकर क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन ध्यान किसका कर रहे हैं, मछली का। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्यः ये आस्ते मनसा स्मरन। आगे क्या है, इंद्रियार्थान, इंद्रियों का जो अर्थ है उस पर चिंतन है। इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो ध्यान तो मछली पर लगा हुआ है, लेकिन बाहरी रूप से क्या दिख रहा है, अटेंटिव चैंटिंग हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। और फिर देखो कोई डिवोटी आसपास नहीं है, सारे चले गए, अकेला हूं मैं, भूख लग रही, कुछ क्या करते हैं। और फिर मछलियों के समाज में भी पता चला ये प्रभु जी अभी भक्त बन गए हैं। तो उन्होंने सोचा अभी तो इनके आसपास घूमने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मछलियां उनके आसपास जा रही है, पांव को स्पर्श कर रही है, लगता है कि नहीं अब ये बिल्कुल विरक्त महाशय है। तो इन्होंने देखा कि जैसे इजी टू अप्रोच, इजी होता है ना, फिर सारी भौतिक सुविधाएं सब आपके आसपास मंडराते हैं, लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है बगोला अपनी चाली निकालता है, तुरंत एक कैच करता है, तुरंत निकल देता है, फिर से जाली लगाता है। तो इसलिए वो कहते हैं डिवोटी, ऐसा डिवोटी तो कैसा, बगोला के समान। बक धार्मिक और दूसरे डिवोटी का वर्णन करते हैं बिराड़ी वैष्णव। उड़िया में ये कहावत है, बिराड़ी मीन्स बिल्ली, कैट। अभी बिल्ली को भी पता चला, उसको लगा कि इतना सारा, बिल्ली को भी कितने चूहे के पीछे भागेगी, वो चूहे तो छोटे छोटे छेद में घुसते ही बेचारी पीछे बाहर समाधि में उनका वेटिंग करती रहती है। पूरे दिन में ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर तीनों मिलना उसके लिए कठिन था, गलती से ब्रेकफास्ट स्किप होकर डिनर में परिवर्तित होता था। उसको लगा कि तीनों मिलना चाहिए, इजी वे क्या है, डिवोटी बनो। उसने भी सोचा अच्छा हेडशो कर लेती हूँ, उसने भी हेडशो किया, नाइस वृंदावन ले बाजार से कंठी। अभी वो बिल्ली है तो गोपी ड्रेस पहनेगी, ये किसी के लिए उद्देश्य के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जस्ट तो बिल्ली महाशय ये जो थी, अभी वो था बगोला क्या था और ये क्या है अभी थी। तो इस बिराड़ी बिल्ली ने भी सोचा अच्छा है डिवोशन कितना अच्छा है, तो उसने भी फिर सारे वेशभूषा, नाइस तिलक, कंठी, एक राउंड नहीं तीन चार राउंड, मेरी माला दिखाई देनी चाहिए, कितना सीनियर डिवोटी हूं। तो ऐसी वो लगी हुई थी और उसने भी अपना एक हाथ जो है जप माला में, वो भी वैसे ही जप करते जा रहे थे जोर जोर से, हरे कृष्णा, और फिर देखा तो उस समय सारे चूहों को भी पता चला अभी बिल्ली क्या बन गई है, भक्त बन गई है। अभी चूहे तो बस आसपास, उन्होंने सोचा अभी हम अभय हैं, भक्त बनने के बाद कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, हम अपेक्षा करते कि नहीं, तो जैसे भक्त बने तो सारे बड़े ओपन होकर उससे व्यवहार करने लगे। फिर बिल्ली को देखा कि कैसे होगा, चूहे तो उसके आसपास घूम रहे थे, बैठ रहे थे, और इसने भी वही उपाय सोचा जैसे किसने किया था, बगुला ने किया था। जैसे ही मौका मिले वैसे ही जप माला साइड में अपना फिर से वही। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं दिखावटी भक्त नहीं बनना चाहिए, धार्मिक जीवन इस प्रकार से नहीं हमें यापन करना चाहिए। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु आने का यही उपाय है, कलयुगे साधु गुरु दुष्कर जानिया। कलयुग में वास्तविक साधु या गुरु प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसलिए महाप्रभु चैतन्य स्वयं आते हैं कि साधु का मतलब क्या होता है, गुरु का मतलब क्या होता है, एक योग्य भक्त क्या होता है, उसको सिखाने के लिए और दिखाने के लिए आए। और इसी चीज की शिक्षा चैतन्य महाप्रभु देते, आपने आचरे प्रभु सिखाई सवारी। आपने आचरे आचरण से चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। वही चैतन्य देव कृष्ण है, बांसुरी को फेंका और किस चीज को पकड़ा, दंडे को पकड़ा, और हम दंडा भी फेंकते और किसी और चीज को पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि आपने ना कैल धर्म सिखान ना जाए। आपन मैं यदि पालन नहीं करता हूं तो दूसरों को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय, चैतन्य चरितमृत कहता है, इसी की व्याख्या श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में की गई है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दंडा अपने हाथ में लेते, त्रिदंड, और त्रिदंड किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, काया मन और वाणी का। तो चैतन्य महाप्रभु का दंडा जब नित्यानंद प्रभु ने तोड़ा तो चैतन्य महाप्रभु उनको डांटते और कहते, अरे मैं तो भिक्षुक हूं और मेरे पास अपना कहने के लिए कोई धन नहीं है, एक ही धन था और उसको भी तुमने तोड़ के फेंक दिया। हाँ, यही चीज थी जो कृष्ण को मैं अर्पित कर सकता हूं। धन क्या है, काया मन वाक्य, जो कृष्ण के प्रति हम समर्पित कर सकते हैं। इसी कारण से हम दंडवत करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक संध्या के समय में अपने मठ में प्रवेश कर रहे थे तो बहुत बारिश हो रही थी और कीचड़ कीचड़ सा हो गया था सब जगह। उसी समय उनके गृहस्थ शिष्य अपने पत्नी के साथ बाहर जा रहे थे, तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को देखा और वहां वो छाता लिए हुए थे और बहुत बारिश आ रही थी, और जैसे इन्होंने देखा एक ग्रस्थ डिवोटी ने तुरंत उस बारिश में कीचड़ में दंडवत प्रणाम किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि क्यों, आवश्यकता नहीं है। तो गुरु शिष्य कहते हैं कि मेरे पास एक ही चीज है जो ऑफर कर सकता हूं आपको, ये प्रणाम जो मेरा ना जो आपको समर्पित कर रहा हूं। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज के जो डिवोटीज हैं वो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि यही हमारे पास एक धन है। इसी कारण से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देह जो किछु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर कृष्ण, मेरा मन शरीर वाणी और जो भी इससे संबंधित है, देह गेह आदि, ये मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इस प्रकार से यही हमारा धन है, शरीर मर वाणी को, आपके बुद्धि को कृष्ण की सेवा में सही रूप से नियुक्त करना। लेकिन समस्या क्या है, हम बहुत बड़ा भक्त बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनना चाहते भक्त, जिसके कारण से बड़ा भक्त बनने के लिए हम कपटता का आश्रय लेते हैं। इसी कारण से वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, कापट्य हैले दूर बाढ़य प्रेमेर पुर। लंबे समय तक हम भक्ति का अभ्यास करते हैं लेकिन लगता है कि अरे भक्ति का जो बाढ़ है वो हृदय में नहीं आई, हृदय खाली खाली, इतना लंबा समय हो गया, इतने साल बीतते जा रहे हैं, हजारों डिवोटीज के बीच में मैं उन्नत भक्त कहलाता हूं लेकिन मेरे हृदय में प्रेम रूपी बाढ़ रंश मात्र भी नहीं है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते चैतन्य भागवत में क्यों नहीं है, क्योंकि कपटता है भगवान। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी भगवत भक्ति में नियुक्त होकर व्यक्ति अपने हृदय में कपटता का भाव रखता है, हाँ, तो उस व्यक्ति का जीवन पशु से भी क्या है, निम्न है। वो कहते हैं इससे अच्छा है पशु योनि में जन्म लेना, बेटर है। इसी कारण से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार संध्या के समय में अपने मठ में थे, तो एक उनका सन्यासी शिष्य था, प्रचार के लिए गया था, गया बड़ा सा पंडाल प्रोग्राम करके वापस आया, तो आके अभी मंदिर में आया तो सारे भक्त एक जैसे ही हैं, तो उनके लिए क्या रखा था भक्तों ने, एक प्लेट लगाकर प्रसाद रखा था 5 बजे, और वो पहुंचे शाम को, तो देखा क्या ये क्या है, ठंडा प्रसाद और बहुत कुछ बोलने लगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज एक विंडो में खड़े होकर उनका वक्तव्य सुन रहे थे, और वो कह रहे थे किसी भक्तों को बुलाया कि आओ यहाँ जाओ जरा किचन में मेरे लिए गरम गरम पुरिया जो फुल गई हो, ऐसी सब चीजें बनाओ मेरे लिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज एक वाक्य बोलते हैं अपने उस शिष्य को देखकर, वो कहते हैं करेलाम सन्यासी है गेलो विलासी, मैंने इसको सन्यासी बनाया था जो अपना मन वाणी शरीर कृष्ण की सेवा में लगाए, लेकिन ये क्या बन गया, अबे विलासी हो गया है। हाँ, तो इस प्रकार से जब कपटता का आश्रय हम ग्रहण करते हैं तो कृष्ण भावना सूखने लगती है। जैसे कहते हैं ना सुख की खोज में व्यक्ति सूख जाता है फिर भी उसको सुख नहीं मिलता, तो वैसे ही हम बड़ा भक्त बनना चाहते हैं लेकिन इस कपटता को त्यागना नहीं चाहते। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक पोयम लिखी है, दुष्टमान हे दुष्टमान तुम्हें किसे रे वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जन घरे तब हरि नाम केवल कैतव, हे पागल मन कैसे हो तुम, प्रतिष्ठा क्यों हम ये सब करते, दिखावा दिखावा भक्ति का क्यों, क्योंकि हम झूठी प्रशंसा चाहते हैं। मैं ऐसा प्रणाम करूंगा ना सारे टेंपल हॉल के डिवोटीज मुझे क्या करे देखे कि प्रभु जी कैसा प्रणाम कर रहे हैं। जैसे एक लेक्चर में सुन रहा था तो सन्यासी कह रहे थे कि ऐसा मृदंग बजाऊंगा कि सारे लोग क्या सोचे केवल मेरे बारे में सोचे कि प्रभु जी कैसा मृदंग बजाते हैं, या फिर मैं ऐसा चामर करता हूं कि पीछे सारा ध्यान कहाँ है, पीछे से देखे कि प्रभु जी कैसे चामर हिला रहे हैं। एक डिवोटी को तो देखा गया ऐसे करते करते वो चामर जाकर कहा गिरा डेटिस के ऊपर। तो मतलब हमारे सारे कार्यों के पीछे क्या छुपा हुआ है, ये जो प्रतिष्ठा की भावना है, दिखावे का जो भाव है। इसलिए गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज जब नवद्वीप में थे तो उनके पास वहां के लोकल डिवोटीज आते हैं, लोग आते वो कहते हैं कि अभी नवद्वीप में गोस्वामी का जो बालक है वो बहुत अच्छा भागवत कथा करता है, और भागवत कथा ही नहीं बल्कि गोस्वामियों के जो लिटरेचर है उसकी भी बहुत अच्छी व्याख्या करता है, और वो हमेशा बोलता है गौर गौर बोले गौर गौर। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा अच्छा वो गोस्वामी लिटरेचर पे एक्सप्लेन करता है भागवत की कथा करता है गौर गौर बोल के बोलते रहता है। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज कहते हैं वो गोस्वामी लिटरेचर एक्सप्लेन नहीं करता, वो इंद्रिय तृप्ति के लिटरेचर एक्सप्लेन करता है, और वो गौर गौर नहीं अंदर क्या है रूपी रूपी क्या चलता रहता है अंदर रूपी रुपया रुपया गौर गौर नहीं। इसलिए गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने कहा गौरा रामी मुखे बल्ले नहीं चले। जैसे प्रभुपाद ने कहा नहीं हरि बोल ज्यादा दिन नहीं टिकेगा जब मेरे ग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे, तो वैसे वो कहते गौरा रामी मुखे बोलने नहीं चले, केवल अपने मुख से जोर जोर से घोषणा करे कि मैं गौरांग महाप्रभु का हूं मैं गौरांग महाप्रभु का हूं ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, फिर कैसे चलेगा। आगे लाइन वो कहते हैं गौरार आचार गौरार विचार लैले फल फले, गौरांग महाप्रभु का जो आचरण है गौरांग महाप्रभु का विचार जो उनकी शिक्षा है इनको जब हम समझते हैं सीखते तभी ये हो सकता है। लोका देखाइया गोरा भजा तिलक मात्र धरी, वो कहते आगे कि लोगों को देख दिखाने के लिए हम ये करते कि गौरांग का भजन करते हैं, नाक में इतना लंबा तिलक डालते हैं। और तो वो कहते गोपन एते अत्याचार गोरा धरे चोरी, हाँ लेकिन गोपनत में हम महाप्रभु हमारी चोरी को क्या करते हैं पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम वास्तव में भगवत भक्ति का जो जीवन है वो यापन करने की अपेक्षा रखते हैं तो हमें क्या करना होगा, हाँ ये जो दिखावे का धार्मिक जीवन है हाँ इसको त्यागना होगा और सरल होकर। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज को पूछा हाँ वैष्णवता क्या है, वैष्णव कौन है, उन्होंने कहा सरलता है वैष्णवता है, क्योंकि सरलता में कपटता को स्थान नहीं है। हाँ इसी कारण से यही जो भगवत भक्ति है वो हमारा धन है। सब कुछ हमने कर लिया, हाँ सारा दिखा दिया सारे लोगों को कि मैं कितना अच्छा डिवोटी हूं, लेकिन आंतरिक रूप से हम कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं है, हाँ तो क्या है, व्यर्थ है। वैसा ही है जैसे हरि भक्ति सूत्रोदय में कहा गया है भगवत भक्ति हीनशः जाति शास्त्रम जपस तप अप्राणय शैव देहश मंडलम लोकरंजनम, कि भगवत भक्ति के बिना शास्त्रों का अध्ययन जप तप आदि ये सब कार्य यदि भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है तो क्या है, ये वैसे ही जैसे किसी शव को क्या करना, अलंकृत करना, वस्त्र पहनाना, माला पहनाना, हाँ लाइफलेस। तो लाइफ क्या है, शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति के अलावा हाँ बाकी सारा क्या है, ढोंग है। थोड़े दिन के लिए हम हो सकते हैं राजा, जैसे पंचतंत्र में वो स्टोरी आती है ना नील वर्ण श्रृगाल। अब एक श्रृगाल का सियार वो गया रात्रि में घूमता था गांव में कुछ खाने के लिए, किसी के घर में जंप मार के घुस गया विंडो से। जैसे लोग विंडो सीट में बैठते हैं ना, वैसे विंडो से घुस गया श्रृगाल सियार जाकल, और फिर लाठी लेकर लोग उड़ गए घर का मालिक मारने के लिए। तो कैसे तो जान बचा कर भाग रहा था, तो एक धोबी का जो एरिया था उसमें ड्रम था बड़ा सा जिसमें नीला पानी डाला हुआ था कलर, ये गलती से जान बचाते बचाते दौड़ते दौड़ते उस ड्रम में जाकर गिर गया। गिर के बाहर निकला तो अभी सब कुछ बदल गया था, वस्त्रों का कलर बदल गया था। बाहर निकला तो जान बचाने के लिए दौड़ रहा था जंगल की ओर, दौड़ते दौड़ते पहुंचा तो सारे जो प्राणी हैं वो देख रहे थे, शेर सारे प्राणी देखा, अरे ये तो इसकी चाल बिल्कुल अलग है, कलर भी अलग है, तो सब उसको राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। किसके रूप में, ये तो किंग है। इवन सिम्बा आदि भी उसकी सेवा में लगे, हाँ मुंह खोलता नहीं था। प्रभुपाद ने कहा मूर्ख का पता कब चलता है, जब अपना मुंह खोलता है। इसलिए कलयुग में इजी है, क्या करो मुंह बंद करके रखो। तो इसने तो अपना मुंह बंद किया था, सारे प्राणी उनकी सेवा कर रहे थे, इन्होंने शेर सिंह आदि इनको कुछ भोजन चाहिए तो तुरंत शेर लाके सेवा में हाजिर। तो फिर ये संध्या का समय हो गया, दिन में जरा ठीक है हाँ, जब तमोगुण रजोगुण बढ़ता है संध्या का समय होता है तो पता चलता है हमारे भगवत भजन का भी। सुबह माला नहीं हुई तो शाम तक खींचते रहते हैं, मध्य रात्रि तक होती नहीं है और फिर सोचते चलो कर लेते हैं। तो वैसे ये बैठ गया और संध्या हो गई तो दूसरे एरिया के जो सियार है वो अपना कीर्तन शुरू कर रहे थे वहां से अपनी ध्वनि बोलते जा रहे थे। सियार तो चिल्ला, मायापुर जाते हो आप तो कितने आवाज होती है सियारों की, तो वैसे वो आवाज जैसे वहां हो रही तो इसको कंट्रोल नहीं हो रहा था। अभी तक तो दिन भर कंट्रोल कर लिया था, किसी को पता नहीं था ये नील वर्ण किंग है। तो फिर उन्होंने जैसे ही आवाज सुनी कंट्रोल ना करते करते फाइनली अपना मुंह ऊपर किया और ध्वनि शुरू कर दी लाउड स्पीकर, सारे जो प्राणी है उनको असलियत पता चल गई, उन्होंने उनकी पिटाई आदि की। तो हम भी क्या करते कभी कभी नकल करते हैं, नकल करके अपने आप को बड़ा महान भक्त होने का ढोंग करते हैं, लेकिन नकल ज्यादा दिन नहीं चल सकती। इसी कारण से शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं कि ये जो भगवत भजन है वो हमें अपना मन हृदय आदि डालकर करना चाहिए। प्रभुपाद के पास एक अफ्रीकन डिसाइपल आया, गुरुदेव मैं ना मायापुर में जाके थोड़ा ज्यादा भजन करना चाहता हूँ 64 rounds। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद तो समझा रहे थे, माना नहीं, जाओ। फिर गया तो गंगा के किनारे बैठकर जप कर रहा था। तो जो भी हो रहा था प्रभुपाद के, जो मायापुर डिवोटीज प्रभुपाद को लिखते रहते थे, फिर उसने सोचा नहीं गंगा के किनारे नहीं, पहले टेम्पल हॉल में जप करता था, नहीं मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवोटी हूँ, मैं भेड़ चाल में थोड़ी चलने के लिए बना हूँ, अलग से दिखाई देना चाहिए ना हमें। अभी क्या लगता है भक्तों के संग से मैं थोड़ा सा डिफरेंट, अलग महसूस हो, मेरा भी अपना कोई स्थान है। तो उसने भी सोचा, तो ये गया गंगा के किनारे, देखा गंगा के किनारे, अच्छा फिर देखा कि नहीं, और थोड़ा सा आगे बढ़ता भजन में, पेड़ के ऊपर जाकर जप करने लगा। पेड़ के ऊपर एक मचान सा बनाया और उसके ऊपर बैठ के जप करता था, और भक्त लोग आके देखा करते थे, खाता नहीं पीता नहीं और जप कर रहा है पूरे दिन। तो एक दिन प्रभुपाद ने लेटर लिखा, पूछा क्या हो रहा है अभी, अपडेट बताओ। तो अपडेट थे कि वो गायब हो गया वहां से। तो किसी एक डिवोटी को मिला जो क्या कर रहा था, राधा कुंड में अनैतिक संबंधों में व्यस्त था और श्वेत मुरली लेकर फूक रहा था। श्वेत मुरली मीन्स सिगारेट, सफेद होती है ना, हर कोई मुरली बजाता है लेकिन कैसी है, श्वेत। तो ये तो नकल करने के लिए निकला था लेकिन डूब जाता है। तो इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु हमें महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि हमें अपना मन वाणी शरीर आदि को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तभी वास्तव में हम क्या कर सकते हैं, भगवान के प्रिय बन सकते हैं। इसलिए कृष्ण यही कामना करते हैं, कृष्ण कहते हैं एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम, देहिनाम यह देहिशु प्राणेरार्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। हाँ, प्राण सबसे पहले कृष्ण कहते हैं प्राण लगाओ अपना कृष्ण की सेवा में, जिसमें सारी चीजें इंक्लूड है। वो नहीं तो अपना अर्थ लगाओ, वो नहीं अपनी बुद्धि लगाओ, वो नहीं तो क्या लगाओ, वाणी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार से कृष्ण हमसे अपेक्षा करते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करे कर परोपकार। तो अपना जन्म सार्थक करने के लिए भी हमें उतना उत्साही कॉन्शियस होना चाहिए और साथ ही साथ दूसरों को भी ये भावना हमें प्रदान करनी चाहिए। इसलिए तो ये हमें दिसंबर का मंथ है महाप्रभु के आदेशों का पालन करने का, महाप्रभु का आचरण और उनके विचार को आगे प्रस्तुत करने का, इस महीने में अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करने का। कोई कह सकता है कि मैं तो ग्रंथों का वितरण मुझसे नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर यदि स्ट्रॉन्ग डिजायर है, सिंसियर डिजायर है, तो कृष्ण हमें वो अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। लॉस एंजलिस में एक माता जी थे शुरुआत के दिनों में, तो वहां के सारे भक्त टेम्पल के, पूरा टेम्पल खाली हो जाता था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाते थे और वो अकेले माता जी को रखा जाता था, उसको कुकिंग भी करना है, डिटीज की वर्शिप भी करनी है, पूरे दिन सारी सेवा है। वो बहुत दुखी थी, दुखी क्या इसलिए नहीं कि सेवा है, दुखी थी कि मुझे ना पुस्तक वितरण नहीं कर पा रहे हो, सारे भक्त जा रहे ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, ग्रंथों का वितरण ग्रंथी को काटने के लिए है। तो जब उसकी इच्छा थी तो अचानक फोन की आवाज आती, लैंडलाइन हुआ करते थे उस समय, आवाज आया, उसने फोन उठाया, फोन उठा दे तो डिवोटीज एक ही चीज बोलते हरे कृष्णा, क्या बोलते हैं,
हरे।
तो वहां से वो बोलता है रॉन्ग नंबर है। तो माता जी, क्योंकि उसको किसी और व्यक्ति का फोन आया था, अचानक ही किसी और को फोन कर रहा था, तो यहाँ ये माता जी ने बोला हरे कृष्णा, तो कहता है रॉन्ग नंबर, तो माता जी कहते हैं हरे कृष्ण का नंबर कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, ये सही नंबर है, सारे नंबर यहाँ ही आहुति देते हैं। तो इन्होंने कहा, उससे बात करना शुरू की, बात करते करते उसको उन्होंने पुस्तकों का बोल दिया, प्रचार किया, और कुछ एक घंटे के बाद व्यक्ति आता है पूरा बुक से भागवतम और सारी बुक्स ले जाने के लिए, और आके वो माता जी से क्या करता है, सारे बुक्स ले जाता है। तो इस प्रकार से हम सिंसियर इच्छा को रखते हैं, हाँ, तो कृष्ण ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं और कृष्ण के हम प्रिय बनते हैं। इसलिए कृष्ण का और कृष्ण के जो भक्त है प्रभुपाद, उनका ये प्रिय बनने का उत्तम महीना है। कृष्ण देखते हैं कि प्रभुपाद इतने क्यों खुश है, इतने क्यों हंस रहे हैं, तो देखते कि साथ में वो दूर नजर जाते हैं कृष्ण, अरे वो डिवोटी पीछे बैठा है ना, उसने किसको हंसाया है, प्रभुपाद को। तो कृष्ण उस डिवोटी के ऊपर कृपा करते हैं जिसने प्रभुपाद के मुख में क्या दिया है, स्माइल। तो हमें तो हम कहते ना गुरु और वैष्णव के सामने एक जोकर बनना है, जोकर हंसाता है, लेकिन केवल हंसाना ही नहीं है, क्या करना है, सेवा करें तो असली स्मित हर्ष उनके मुख पर उदित हो सकता है। तो आज के श्लोक से हम यही हम शिक्षा ले सकते हैं, जहां मुनिगण वेद को बताने के लिए जा रहे हैं कि धर्म आचरिता पुंसा, जो पुंसा है मनुष्य है धर्म का आचरण करते हैं, करेंगे यदि वाणी मान शरीर और बुद्धि के द्वारा, तो क्या होगा, लोकान विशोकान शोक से रहित हो जाएंगे और उनके सारे कलमश दूर हो जाएंगे और अनंत्यम अपार सुख की अनुभूति वो कर पाएंगे। और प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक चीज पर जोर दिया है कि हमें दिखावटी धार्मिक जीवन यापन ना करते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए भली प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, जिसके द्वारा सबका उद्धार हो सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी की समीक्षा,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया और अंत में निष्कर्ष निकाला पुस्तक वितरण, पुस्तक वितरण में करना चाहिए।